सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के क्रम में दो प्रसंग हो चुके हैं, क्योंकि जीवन में मुक्ति के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहले बताया वैराग्यम आत्मबोधो भक्तिश्च इति त्रयम गदितम। गदितम माने कथितम। पहला है वैराग्य, दूसरा है आत्मज्ञान, तीसरा है भक्ति। तो इसी क्रम में पहले वैराग्य का कथन किया, वैराग्य के बाद आत्मज्ञान का भी प्रसंग पूरा हुआ। लगभग ज्ञान है आप सबको हो ही गया, लेकिन ज्ञान होने के बाद वह ज्ञान बस प्रेमपुरी तक टिकता है, बाहर जाके गायब हो जाता है। तो जब तक आपका अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। अभिव्यक्ति ज्ञान की तो हो जाती है, अंतःकरण तात्कालिक अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर भी ज्ञान प्रादुर्भूत हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन वह ज्ञान तुरंत गायब हो जाता है। क्योंकि एक मन ऐसा है ना कि मन में 24 घंटे वैराग्य भी नहीं रहता है, क्योंकि मन का एक काम ही है कि सब विषय ही रहता है। मन निर्विषय होए बड़ा ही मुश्किल काम है। हम लोग भी जब घर छोड़े थे बचपन में, जो वैराग्य की उत्कृष्टता थी, अब सही बताऊं वो वैराग्य कहां रह गया। पहले वाला जिस समय घर छोड़ा था, जमीन में सो जाऊंगा, भिक्षा मांग के भोजन कर लूंगा, गंगा में नहा लूंगा है। लेकिन अब गंगा में नहाते हुए तो थोड़ा क्या लगता है, सर्दी लगती है, डर लगता है। एक बार जब से डॉक्टर ने मना किया तब से कान में कुछ हो गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहाते हो तो कान में पानी जाता है, मत नहाए कीजिए। तब से डर लगने लगा। मतलब कहने का भाव है कि वो वैराग्य सही उम्र का भी एक, वैराग्य में भी एक उम्र प्रभावी होती है। जब जवानी की उम्र होती ना तो उसमें पूरा वो रहता है, किसी भी काम को करने का पूरा एक क्या होता है, उत्साह जोश रहता है। और जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है उस तरफ से जोश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलो तो भक्ति चाहिए, क्या चाहिए, वह ज्ञान हमेशा टिका रहे। भक्ति के बल से ही हमारा अंतःकरण दोबारा गंदा नहीं होगा, क्योंकि भक्ति पे उस अंतःकरण के ऊपर एक ऐसा आवरण चढ़ जाता है कि जो विषय रूपी धूल आती है ना, धूल आते ही फिसल जाती है। वैराग्य के बल से ये समझना वैराग्य वो है मोटा वाला झाड़ू है सीख वाला, सफाई तो कर देता है लेकिन जो फूल वाली झाड़ू है ना वह कौन सा हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा, एकदम इतना साफ कर देता है उसके ऊपर एक इतना, भाई देखो ये पहले घिसते नहीं है फर्श मार्बल, हम भाई देखो सिविल इंजीनियर हैं तो इस हिसाब से समझाते हैं क्या करें, क्योंकि जिसके संस्कार में जो भरा है ना गृहस्थी गृहस्थी ढंग से समझाएगा, जिसका जो पूर्व संस्कार होता है ना उसी अनुसार वह दूसरे को समझाता भी है। जैसे क्या कहते हैं कि आपका ये फर्श है, फर्श को चिकना करने के लिए पहले क्या करते हैं पानी डाल के मशीन लगाते नहीं मेरे कहते हैं, मशीन से पूरा क्या करते हैं घिसते हैं, और घिसने के बाद क्या करते हैं पॉलिश करते हैं, तब उसमें चिकनाहट, यदि केवल घिस करके ही छोड़ देवे ना तो उसमें धूल आदि बहुत जल्दी जमेगी, यानी तेल आदि बहुत जल्दी उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके ऊपर पॉलिश करके इसको एकदम चिकना बना देते हैं, उस पर चलो तो पांव भी क्या हो जाता है फिसल जाता है, गिरने का बड़ा नया नया एकदम फर्श हो गए तो उससे चलने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं कब स्लिप कर जाओ पता नहीं। ऐसे ही जब भक्ति से आपका अंतःकरण क्या हो जाता है एक पॉलिश्ड हो जाता है, वैराग्य से अंतःकरण की गंदगी क्या हो गई एकदम साफ निकल गई, अब उसके बाद भक्ति का लेप करके उस अंतःकरण को एकदम क्या कर दिया चिकना बना दिया, तो उसके ऊपर विषय रूपी जब धूल आती है ना तो वह धूल घुसती नहीं है, वह फिसल करके निकल चली जाती है, ये है उसका सिद्धांत। तो यदि भक्ति हो गई जीवन में तो जो ज्ञान हुआ है ना वह ज्ञान पूरी तरह से क्या रहेगा एकदम टिका रहेगा। तो भक्ति का स्वरूप क्या है तो बताया कि परमात्मा के ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त रूप है दूसरा अमूर्त रूप है, एक व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त है। जो व्यक्ति की उपासना करता है वह व्यक्त उपासक, जो अव्यक्त की उपासना करता है वह अव्यक्त उपासक है। जो व्यक्ति की उपासना करता है वह भक्ति स्थूल भक्ति है, और जो अव्यक्त की करता है वह कौन है सूक्ष्म भक्ति है। ये सब थोड़ा सूक्ष्म वस्तु को पकड़ना कठिन है, इसलिए भगवान ने कहा क्लेशात क्लेशात, किसके लिए देह अभिमानी के लिए, जिसकी दृष्टि अभी स्थूल में टिकी हुई है ऐसे व्यक्ति को सूक्ष्म ब्रह्म को पकड़ना बहुत ही कठिन है। तो ऐसे देहाभिमानी के लिए कौन सी भक्ति सरल होती है स्थूल भक्ति। स्थूल भक्ति का स्वरूप क्या है इस पर कल हम लोगों ने चर्चा किया, स्व आश्रम धर्म आचरणम, ये उत्तरोत्तर स्टेप है, पहला नीचे का कदम फिर ऊपर फिर ऊपर, अपने आश्रम के धर्म का आचरण करना ये पहली भक्ति है। हम यही नहीं करते, करते हैं बताओ, विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन के अलावा उसकी दृष्टि कहीं जानी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या करता है आप जानते ही जानते हो, गृहस्थ का काम कौन कर रहा है आजकल 20-22-24 साल के लड़के कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म वाले अनुष्ठान कर रहे हैं, अविदित मतलब क्या है अविहित अनुष्ठान अमान्य अनुष्ठान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पतित हुए नहीं पतित हुए, यहां तक कि ब्रह्मचर्य को शरीर में भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए देखो स्कूल की जिंदगी में सबका एक ड्रेस है, अर्थात इसलिए कि फैशन तुम मत करो, शरीर सबके एक ड्रेस है तो उसमें क्या दिखाना है अपने से, क्या बड़ा दिखाना क्या छोटा दिखाना। अब गुरुकुल की परंपरा में देखा जाए तो सारा बाल भी क्या हो गया गंजा करके, केवल मात्र क्या रखा गया चोटी रखी गई, एक यूं कपड़ा पहनाया गया, इसका भिक्षा से जो भोजन मिल जाए चुपचाप उस भोजन को, क्यों गृहस्थ से सही बताऊं एक तपने की उम्र होती है, एक तप की उम्र होती है, और जो व्यक्ति गृहस्थ कराऊ ब्रह्मचर्य एक तप की उम्र होती है, कष्ट सहने की उम्र होती है, अपने आप को मजबूत बनाने की उम्र होती है, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में ये सब परिस्थितियों को जी लिया गृहस्थ में कभी वो दुखी नहीं हो सकता, मैं पक्का गारंटी, और जो बच्चे बचपन से ही आजकल उसको हम बड़ा शान समझते हैं, मेरा बेटा एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ता है, सही बताओ शान समझते हैं, वहां कोई हमारे बच्चे को एक शब्द बोल नहीं सकता, यदि टीचर ने बोल दिया तो टीचर स्कूल से बाहर करवा देंगे, इतना हमारा पेरेंट्स का इतना बल है, क्यों होता ही नहीं होता है। अब वो बच्चा जब जीवन में कष्ट नहीं सहेगा, दो चार बातें किसी की नहीं सुनेगा, तो गृहस्थ जीवन में जाएगा और जब उसको पत्नी की बात सुनना पड़ेगा, अब बेटों के दस तिरस्कार सहने पड़ेंगे, बताओ वो सहेगा कि आत्महत्या कर लेगा। उस गृहस्थ की परिस्थितियों में मुंबई के लोकल में जब थक्के उसको खाना पड़ेगा या बाहर किसी देश में जाएगा वहां के वातावरण में उसको रहना पड़ेगा, बताओ वह रह पाएगा कि विक्षिप्त हो जाएगा। इसी कारण आज हमारा गृहस्थ जीवन क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है। गृहस्थ जिसमें स्वस्थता की उम्र होनी चाहिए, गृहस्थ माने जवानी की, पूर्ण जवानी की उम्र, उसमें 50 बीमारियां ग्रसित हो गई हैं। देखा जाए हमारी बीमारी इसी में आ रही, 30 से 50 के बीच में ही देखो सब के सब बीमार पड़े हैं, क्यों ब्रह्मचर्य जीवन उनका अच्छी तरह से नहीं हुआ। इसलिए जब ब्रह्मचर्य का बीज ही अच्छी तरह से नहीं हुआ तो तना कैसे मजबूत होगा मेरे बता दो। इसलिए ब्रह्मचर्य में डांट भी चाहिए, सर्दी गर्मी पानी से नहाना भी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए, मतलब एक पूरा खाने पीने भी क्या होना चाहिए, जो मिल जाए वैसा भोजन करना चाहिए, न खाए तो उसको डांट के खिलाओ। आजकल तो मम्मियों की कहां चलती है, मम्मी मैगी खाना तो मैगी खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना है, मैं घर छोड़ दूंगा। अब मम्मी बेचारी क्या करें, मनाना ही पड़ता है, बड़ी मुश्किल घड़ी है, सही बता रहा। अरे सही बात, हमने बिगाड़े हुए हैं। बचपन से बच्चों को संस्कार देने वाले कौन है, हम ही हैं। यदि बचपन से या बच्चों को थोड़ा सही बताऊं, पढ़ना लिखना संस्कार नमस्कार कपड़े आदि में बरतो व्यवहार करो तो बच्चा जवानी में कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। हम बचपन में ही उन बच्चों को ऐसे चाहे कपड़े लाते हैं चाहे ऐसे खिलाते हैं कि वो बच्चा जवानी में जाकर के फिर उसको उसमें तो अल्लाह की उम्र होती है, उसमें तो और विवेक शक्ति खो जाया करती है, उसमें और मनमानी करना शुरू कर देता है। लेकिन यदि बचपने में आपने उसको संयमित जीवन जिला लिया तो जवानी में भी वो क्या करेगा, संयमित जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा। अरे आप देख लो, और क्या मुसलमान की लड़कियां देखो स्कूल जाती हैं, कैसे जाती हैं, उनके कपड़े में यूं करके युवावस्था तक में भी उनका वो संस्कार वो आदत छूटता नहीं है। चलो वो तो समय है, क्या करोगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है समझना और समझाना। इसलिए वो उमा बहन बता रही थी बाबा रामदेव गुरुकुल चलाने वाले हैं, चिंता न करो। हाँ कह रहे चार चार साल बच्चों को बुलवा रहे हैं, पुरानी परंपरा का फिर से वो होगा, देखो हो जाए तो हम भी खुशी हो जाएंगे कि हमारे बच्चे में एक क्या होगा, वीरता ऐश्वर्य वीर मतलब वो आएगा। दूसरा, उस भक्ति से थोड़ा ऊपर उठना है तो क्या करना है, कृष्ण प्रतिमा अर्चन उत्सव, भगवान की प्रतिमा में नित्य अर्चन करते हुए एक उत्सव होवे, उत्सव माने एक उत्साह होवे। कैसे, विविध उपचार कर रही है, अनेक प्रकार के उपचार के द्वारा, अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा भगवान की खूब क्या करो, अर्चना करते हुए एक उत्साह होना चाहिए। रो रो के नहीं पूजा करनी चाहिए, बड़ा महंगा फूल आ गया है भगवान भी क्या करें, रो रो के खरीद रहे हो, रो रो के चढ़ा रहे हो, उसमें क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करें कि देखो बता रहा हूं कि किसी न किसी रूप से मन को संसार से हटाना और किसी उत्कृष्ट वस्तु में लगाना ये उद्देश्य है। अचानक हम अपने स्वरूप में मन को लगाएंगे तो मन आने वाला तो है ही नहीं, लेकिन जब पूरा ताम झाम ऐश्वर्य करेंगे
तो आपके चित्त की वृत्ति में फूल खरीदना है, भोजन खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, मुकुट खरीदना है, यह सब खरीदने के लिए कम से कम आपकी चित्त की वृत्ति में कौन घूमता रहेगा? वह ईश्वर घूमता रहेगा? नहीं घूमता रहेगा, संसार नहीं घूमेगा। इसलिए मैं देखता हूं जो हरिद्वार अथवा वृंदावन जाते हैं भगत लोग, जो भक्त वाले होते हैं ना, तो हम मार्केट में बाजार में जाकर के भगवान का मुकुट खरीदेंगे, भगवान के वस्त्र खरीदेंगे, भगवान के पायल खरीदेंगे, कम से कम इन सबको खरीदते हुए उनके चित्त की वृत्ति में क्या घूम रहा है? ये तो बहाने से घूम रहा ठीक है, लेकिन घूम तो रहा है। और जिसके अंदर भक्ति नहीं है वह वहां जाके क्या घूमता है, क्या खरीदता है, आप लोग जानते ही जानते हो। कोई पक्ष खरीदेगा, कोई वो खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा। तो भगवान की प्रतिमा की अर्चना करने में एक क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। और नित्य कैसे करना है? विविध उपचार करणी है, अनेक प्रकार के उपचारों के द्वारा। अब आगे उससे भी श्रेष्ठ भक्ति आई, ध्यान देना। नीचे से ऊपर उठते जाना ऐसा नहीं, जब हम पैदल चलते हैं तो आगे के कदम को तो बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं तो आगे के कदम को बढ़ाते जाओ, लेकिन कब तक बढ़ाओगे? एक सीमा भी तो है ना, एक फुट, दो फुट, ढाई, तीन तक बढ़ जाएगा, अन्यथा स्केटिंग करने वाला होगा मान लो चार फुट बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे के कदम को उठाना पड़ेगा तभी आगे जा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, पीछे के कदम को वहीं जमा देते हैं अंगद की तरह, आगे के कदम को क्या करते हैं, यूं यूं एक जीने पे ले गए, फिर दो पे ले गए, तीन पे ले गए, इसके बाद अब तो भाई पीछे वाले कदम को उठाओ, आगे बढ़ो। जब तक हम पीछे के कदम को नहीं उठाएंगे तब तक हम ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पकड़ना किसी भी वस्तु को, तो उस वस्तु को पकड़ने के बाद उसको छोड़ना भी सीखना चाहिए। जब तक छोड़ना नहीं सीखेंगे ना तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आगेला भक्ति है हरिदासैः संगमः शश्वत। हरिदासैः जो भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों का शश्वत माने नित्य संग करना। क्यों साथ करें महाराज जी? कहते देखो, हर व्यक्ति के भीतर अच्छे संस्कार भी हैं, हर व्यक्ति के भीतर बुरे भी संस्कार हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, साफ सी बात है। अच्छे ही संस्कार बहुत होते तो हम देवता बन गए होते, बहुत बुरे संस्कार होते तो हम पशु पक्षी कीट पतंगा वृक्ष बन गए होते, लेकिन हम हैं क्या? मनुष्य। मतलब हमारे भीतर दोनों के संस्कार मौजूद हैं, कौन कौन? अच्छाइयों के भी और बुराइयों के भी। अब उन संस्कार मौजूद हैं, ध्यान देना, अब उन संस्कारों को हमें क्या करना है? पैदा करना है, पेड़ बनाना है। अभी बीज है ना, संस्कार में बीज है, उसको क्या बनाना है? वृक्ष बनाना है। अब वृक्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई देखो, जमीन के भीतर तमाम अंकुर हैं, गेहूं भी है और क्या, धान भी है, चावल का बीज है, बाजरा भी है, ज्वार भी है, अरहर भी है, जो गांव वाले होंगे जानते होंगे अरहर, तुअर अरहर। अब बाहर का वातावरण जिस बीज के अनुकूल होगा वही बीज अंकुरित होगा कि दूसरा अंकुरित होगा? इस समय यदि अंकुर करना चाहो तो गेहूं बहुत जल्दी अंकुर हो जाएगा, चना बहुत जल्दी अंकुर हो जाएगा इस समय, नहीं सरसों अंकुर हो जाएगा, लेकिन धान, बाजरा, ज्वार, मूंग इसमें नहीं अंकुर होगा उतनी आसानी से। अच्छा, और यही बरसात के समय में, नमी के समय में चना अंकुर करना चाहो तो दूसरे दिन चना देखो, जब अंकुर करके बांधते हो तो उसमें चिकना चिकना आ जाता है, देखा नहीं? देखा है किसमें? चने के अंकुर में या चने के बीज में क्या जाता है? एक चिकना चारा जी सड़ना शुरू हो जाता है दूसरे तीसरे दिन ही। इसमें पांच पांच दिन रखे रहो तो भी चने का बाल बांका, बल्कि इतना बड़ा अंकुर निकल आएगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला? तो बाहर का वातावरण जैसा होगा आपके भीतर के संस्कार वही उद्भूत होंगे। यदि बाहर का संस्कार संसारियों का हो, बाहर का संग किसका होवे, संसारियों का होवे, भोगियों का होवे, विषयों का होवे, तो आपके भीतर के संस्कार कौन से पैदा होंगे, विषयी भोगी कामी, सही बताऊं आपकी भी दौड़ हो जाएगी। और बाहर के संस्कार में यदि अच्छे महापुरुषों का साथ होवे तो आपके भीतर क्या पैदा होगा, तप संतोष त्याग भक्ति सेवा ये सब पैदा होगा। लेकिन हमारा साथ किसका होता है बोलो भाई, बड़ा मुश्किल है। हमने तो अजमा के देखा है, आप कई नौकरी करते हो, कितना मिलता है आपको, मान लो 10,000 रुपए महीने मिलते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए आप गए किसी संसारी के पास है, भाई कितना पाते हो, तो क्या बोलेगा, क्यों मधुसूदन भाई 10,000 रुपए महीने, अरे इतनी महंगाई के जमाने में 10,000 में कैसे काम चलता होगा, है नहीं, कुछ ऊपरी इनकम हो जाती क्या। अब ध्यान ना, वो आदमी इतना ईमानदार था, कभी सोचा भी नहीं था ये ऊपरी इनकम क्या होती है, सही बता रहा हूं, कभी उसने सोचा भी नहीं था ये ऊपरी इनकम क्या होती है। उसने हमें सिखा दिया ऊपरी इनकम, हमने कहा मतलब क्या है, तो कहा 10 रुपए का फोटो कॉपी कराओ, बाइकोल बना लो 40 रुपए का, इसका नाम क्या है, सिखाते हैं लोग, सच बता रहा हूं, मेरे को भी सिखाया। मैं नौकरी कर रहा था जिस समय इंजीनियरिंग में, तो जिस बिल्डर के यहां, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी उसके पहले, टाइम तो बिताना ही था ना, किसी बिल्डर के यहां कर रहा था, तो बिल्डर की बीबी ही कही, सब खाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते हो, जूस पिया करो 10 रुपए का, लिख दिया करो 40 रुपए का जूस पिया। बिल्डर की बीवी खुद बता रही है, मतलब मालकिन ही खुद बता रही है कि तुम ऐसे मेहमानी किया करो। तो अब समझ लेना संसार के लोग क्या सिखाएंगे, उनके भीतर बेईमानी है तो आपके भीतर भी क्या डालेंगे, बेईमानी का बीज डाल देंगे, सच बता रहा। दूसरा, अच्छा है, आपके पास कौन कौन रहता है, मैं हूं, मेरी पत्नी है नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप कहीं सोचो, फिर मेरे माता है, मेरे पिता है। अच्छा आप कितने भाई हो, 2 भाई हैं, वैसे हम 4, मेरा उदाहरण दे रहा हूं 4। अच्छा मम्मी तुम्हारे पास रहती है क्या, भैया के पास नहीं रहती क्या। मैं तो पहले बड़ा खुश हो रहा था, कम से कम माँ मेरे पास है, पिता मेरे पास है, उनकी सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, और संसारी ने क्या संस्कार डाल दिया, अरे भैया माँ बाप ने पैदा दोनों बच्चों को किया है तो तुम ही उनके खर्चा उठाने का ठेका ले लिए हो क्या, उनको उनके पास ही तो जाना चाहिए कुछ दिन रहने के लिए। अब मैंने, मेरे मन में संस्कार आ गया, जाके मैंने माँ से बोल दिया, मम्मी ऐसा करो कुछ दिन भैया के पास भी रह लो। अब बताओ हमारा गलत शिक्षा दिया लोगों ने या अच्छी शिक्षा दिया। और यदि किसी महापुरुष के पास जाओगे अब महापुरुष से कहोगे मेरी माँ मेरे पास रहती है, तो कहते माँ को इतना प्यार करना कि माँ दूसरे के पास जाने के बारे में सोचे ही नहीं, माँ की सेवा से बड़ा पुण्य दूसरा कोई है ही नहीं। अरे खुद भूखे रह जाना, माँ को रोटी खिलाना, तो बताओ आपके भीतर त्याग सिखाएगा नहीं सिखाएगा, सेवा सिखाएगा नहीं सिखाएगा, कौन, महापुरुष लोग। और संसार के लोग क्या सिखाएंगे, मेरी तेरी, सच बता रहा हूं, यही सिखाने वाले हैं। संसार के लोग तो रुलाने वाले हैं, खुद रोते हैं दूसरे को रुलाते हैं। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मां के पास बंगाल की कोई विधवा आई, बाल विधवा। अब बंगाल में विधवाओं की हालत तो आप लोग जानते हैं, बड़ी बुरी दशा है, सब ज्यादा विधवाओं की हालत बुरी कहां है, है ना, उसे गंजा कर देना, उसको चुड़ैल बोलना, डायन बोलना, उसको घर में नहीं घुसने देना, फिर ट्रेन में जाकर के वहां वृंदावन में धक्के मार के क्या करेंगे, उतार के खुद चले जाएंगे। अब बेचारी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो बंगाली बोलेंगी, वहां के लोग भी समझते नहीं है, क्या करें, कैसे जीवन जीते हैं, भगवान मालिक है। तो बेचारी आकर रोना शुरू करती, कौन सी वो विधवा रोना शुरू करती, मां ने क्या समझाया, अरे तू रोती क्यों है, भगवान तुम्हें विषय सांसारिक विषय भोगों में रखना ही नहीं चाहता है, तू पूरे जन्मों की कोई देवी रही होगी, किसी प्रारब्ध बस तुम्हारा यहां जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद परमात्मा तुम्हें विषय भोगों की दलदल से निकालना चाहता है, इसे विषय भोग की सामग्री हटा लिया, तू तो योगिनी है, राम शारदा आश्रम में रह करके उसने फिर साधना का अपना जीवन एक शुरू कर दिया। तो देखो महापुरुषों के साथ रहोगे तो आपका दुख भी क्या हो जाएगा, समाप्त होकर के एक जीवन जीने की कला आ जाएगी। और संसारियों के पास अरे उसका मुंह देखना पाप है, नहीं बोल देते क्या, अरे अच्छे काम के लिए जा रहे थे कहां से दिखाई दे गई, वापस चलो। ऐसे कई लोग, एक तो लड़का कहा तेरी माँ विधवा हो गई है, बहू आएगी ना तो पहले माँ के पांव नहीं छुलाना, किसी और को सधवा औरत के पांव छुआना। उसने कहा ऐसा परंपरा का, मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरा बाप है, मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है, मैं माँ के अलावा और कहीं, पहले माँ बाद में सारी दुनिया। तो ऐसे संसार के लोग उस माँ में नहीं हीन भावना आवे न तो भी ये लोग क्या करेंगे, हीन भावना डाल देंगे और महापुरुषों के पास जाएंगे, भगवान के भक्तों के पास जाएंगे। तो आपकी किसकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान एक पुस्तक पढ़ना, एक कैसेट सुनना, कभी न कभी अच्छी चर्चा होगी। और संसार के लोगों में वो कपड़ा खरीदना, वो वाला बहुत बढ़िया आदमी है, वो जगह बहुत बढ़िया है घूमने वाली, संसार के लोग संसार की वासना डालेंगे। इसलिए क्या करना है, हरि भक्तों का आप लोग भी अपना साथ करते रहना, किसका कर ही रहे हैं, प्रेमपुरी में आने वाले व्यक्तियों के संसर्ग में रहना, यहां बंबई वाले न बन जाना कि पड़ोस में भी कौन रहता है किसी को कोई पता है ही नहीं, कौन आया कौन गया, एक दूसरे के संबंध में रहना। सच्चा प्रेम से बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं, रूखापन जीवन है, कोई जीवन है क्या। आगे क्या होना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ रह करके अब क्या करना है, संसार की बात करना है या भगवान की कथा करनी है। तो कहते हैं कृष्ण कथा श्रवणे महोत्सव है, भगवान कृष्ण की कथा के श्रवण करने में महान क्या हुए, उत्साह हुए। रो रो के नहीं, झपकी ले लेके नहीं, कहां से चाटने के लिए बैठ गई, इसको तो एक चर्चा कराओ दूसरे कुछ चर्चा मिलता ही नहीं है। संसार वाले लोग नहीं बोलते क्या, जब देखो वही के वही, दूसरा इसके पास कोई काम है ही नहीं, जम्हाई ले लेकर के सुन रहे हो। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आपकी कथा में कोई उत्साह है ही नहीं, लगन है ही नहीं, एकदम बिना पलक झपकाए बड़ी तत्परता से एक शब्द भी छूट जाए तरह आपने क्या बोला। तो उस उत्साह के साथ यदि कथा सुनेंगे तो सच बताऊं कथा आपके जीवन में उतरेगी। अभी हम कथा पूरी तरह से सुनते हैं क्या, अरे भागवत के महात्म्य चार लोग हैं बताए गए ना, कौन चार श्रोता हैं, कौन कौन से कौन, अरे भाई पहला है श्रेष्ठ श्रोता, कौन सा, अरे नहीं लास्ट भगवान भागवत के अंतिम महात्म्य, पहला श्रेष्ठ श्रोता है चातक पक्षी, क्या है, एक स्वाति के बूंद के अलावा संसार में कोई भी विषय वस्तु पड़ी है, लाख जल पड़ा है, लाख वैभव पड़ा है, लेकिन मेरे काम की कोई चीज है ही नहीं, मेरे को चाहिए कौन सी बूंद चाहिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद, हर पल उसी तरफ देखा है एकाग्र करके। वह कौन साधक है, सबसे उत्कृष्ट साधक है, सबसे श्रेष्ठ साधक है, कौन चातक। तो आप क्या बन जाओ, ए कौन व्यक्ति क्या खरीद रहा है, क्या पहन रहा है, क्या जीवन जी रहा है, मतलब दुनिया में क्या हो रहा, कोई चिंता ही नहीं, किसमें रमण कर लेना है, एक इन अध्यात्म शास्त्रों के अलावा बुद्धि कहीं अन्यत्र जाए ना, वह व्यक्ति कौन है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, उसका नाम क्या है, उसी में वही है ना ब्रह्म अभ्यास है, क्या है ब्रह्म अभ्यास, तत्कथनम तत्चिंतनम तत अन्योन्य संभाषणम, उसी का एतद एक परत्वम च ब्रह्म अभ्यास विदुः बुधा, ऐसा बताया गया है कि उसी का ही चिंतन, उसी का ही कथन, उसी से एक दूसरे से क्या हुए वार्तालाप, एक सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता उठे न, वह सबसे उत्कृष्ट साधक है, वह साधक कौन है चातक। दूसरा है उससे थोड़ा सा नीचे वाला, कौन है, हंस। कौन है? अब महाराज असली माल मिलता कहां है? है नहीं, असली माल मिलता कहां? तो हंस क्या करता है, दूध में से पानी को छोड़ देता है और पनीर पनीर को खा जाता है। उसकी चोंच में ऐसा केमिकल होता है, दूध में चोंच मारेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो पनीर को खा जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो इन संसार में भी नकली माल को छोड़ देगा, असली असली को पहचान लेगा, क्योंकि संसार में दृष्टि तो जाती नहीं जाती है भाई। देखो वस्त्र है, ये कुर्ता है, पैजामा है, ये दुपट्टा है, ये पगड़ी है, दृष्टि गई नहीं दी, लेकिन इन नाम रूपों को क्या करता है, छोड़ देता है और किसको पकड़ता है, सूत को पकड़ लेता है। ऐसे आपके भीतर भी काले हो, गोरे हो, सुंदर हो, सुंदर है, कितनी बाड़ी मीठी है, कितनी फटी हुई आवाज है, इन सबको छोड़ देता है, किसको पकड़ लेता है, इन नाम रूप को सत्ता देने वाले उस परमात्मा को क्या कर ले, पकड़ ले। उसका नाम कौन है, हंस है। महाराज इतनी हमारी विवेक शक्ति नहीं है। तो तीसरा है कौन है, मत्स्य, मछली। मैंने मछली जब कोई चीज खाती है ना तो निर्निमेष बगे चाव से खाती है, भले आपको विवेक करना नहीं आता लेकिन शांति से सुनते रहो, निर्निमेष एकदम शांति सुनते रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप दूसरे अथवा ऊंचे स्तर में पहुंच जाओगे। देखे ना, इतना विवेक न होए तो भी ये काम करना। आपके यहां टोटकाचार्य जी रहे, क्या रहे, टोटकाचार्य जी, शंकराचार्य जी के शिष्यों में, बेचारा थोड़ा सा बुद्धि के क्या थे, मंद थे, लेकिन सत्संग में कभी नागा न करें, एकदम बड़े ध्यान से सुनते रहे। एक दिन बताया भाई कपड़ा धुलने के लिए गए, सत्संग सुनने आए ही नहीं, गिरी गिरी नाम था, तो पदम पाता जाट जी ने कहा महाराज जी सुनाइए ना, कहा को गिरी आ जाए तब सुनाता हूं, तो कहा ये पत्थर की शिला है ना, इसी को गिरी समझ लो और क्या, आपकी इतनी ब्रह्मसूत्र की बातें कहां समझता हो, जड़ बुद्धि है, पत्थर भी जड़ ही है, उसका भी नाम गिरी है, इसको भी गिरी मान लो और क्या, पहाड़ ही तो है और क्या। भगवान शंकराचार्य को लगा किसको ज्यादा अपना क्या हो रहा है, अभिमान सा हो रहा है, बस आंख बंद करके यहीं से वहां क्या किया, सत्ता दिए और वहां से आया एकदम ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त होता हुआ, अतोटक स्त्रोत्र में स्तुति करता हुआ आया, और उन्हीं का ग्रंथ आप लोग पढ़ ही रहे हो, श्रुति सार समुद्धरणम, एकमात्र ग्रंथ है किनका, उनका। चलो तो कहने का अभाव है कि निर्निमेष सुनो, आपके भीतर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब किस शब्द का कौन सा शब्दाग्रह लग करके आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए एक ही बार बात लगनी चाहिए एकदम समझ में आ जाता है। जैसे एक माँ अबोध बच्चे को एक बार समझाती है, ए तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारी, बच्चे को तो अपनी माँ का भी पता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ, और उस बच्चे को अपनी माँ ही दिखती है, बाद में लाख दूसरा समझावे ये तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार होगा नहीं। कितने हुए, तीन। चौथा श्रोता है और निकृष्ट, वो है सुख। कौन है वो, हम लोगों में आ जाएंगे। सुख माने क्या हुआ, तोता, पोपट गुजराती में है, पोपट की एक विशेषता होती है, क्या होता है, वो सुनेगा तो सुन करके आपको बढ़िया से सुना भी देगा, लेकिन उसका अपना जीवन बोल तो देगा लेकिन अपने अंदर से उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोगों ने भी श्रवण किया गुरुमुखों से, आपको बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझा भी देते हैं, लेकिन हमारे मन में संसार का राग द्वेष मोह माया छूटती है ही नहीं। तो समझ लो हम लोग कौन हो जाएंगे, अभी निकृष्ट में आएंगे, निकृष्ट श्रोता में आएंगे, जबकि सबसे श्रेष्ठ श्रोता है कौन है, चातक, उससे नीचे उतरे तो हंस, उससे नीचे आए तो मीन, और उससे नीचे आए तो सुख है। सुख की विशेषता समझ में आ गया ना, भले मैं बार बार कहता हूं, भले मैंने अपना कल्याण नहीं कर पाए, सुनाने वाला भले अपना कल्याण न कर पाया, फिर सुनने वाले की बात को सुन करके दूसरे लोग तो अपने जीवन को बहुत कुछ बदल ही लेते हैं, इसलिए इसको भी उत्कृष्ट ही माना गया है, इसको भी श्रेष्ठ माना गया है। तो चार श्रोता एक कौन माने जाते हैं? साधक श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं। चार निकृष्ट हुए तादे में, चार निकृष्ट हैं। निकृष्ट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप निकृष्ट न बनना। निकृष्ट श्रोता में पहला श्रोता है भेड़िया ओल्फ, WOLFN ओल्फ भेड़िया, हाँ भेंडा शेर का बच्चा मेमना, उस शेर का वो। अब देखो हिरण के बच्चे घास अच्छी तरह से चल रहे हैं, वो आएगा भेड़िया आएगा दहाड़ेगा है नहीं, गुदलाएगा, बच्चे इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, नहीं करते, उनका चलना बंद हो जाता है। तो आप लोग भी चल रहे हो अभी, क्या घास है, कौन सी घास है, शब्द रूपी घास है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, उसी में एक व्यक्ति खड़ा होकर के स्वामी जी महाराज की जय, ये कहेगा कौन भगत आ गया भैया, उसको देखना शुरू कर देगा, वो अच्छा श्रोता नहीं माना जाता है। आपने सबके ध्यान को हटाया और सबका ध्यान कहां लग गया, पीछे कौन आया, ये बड़ा स्वामी जी का भगत कौन आ गया, अथवा बीच में कथाओं के बीच में जो तालियां भी बजा देते हैं उसको भी अच्छा, कथाओं के बीच में जो नाचना उतना शुरू कर देते हैं, सबका ध्यान कहां से हट करके उसको किसके ऊपर लग जाता है, उस नाचने वाले पे लग जाता है। इसलिए ये श्रोता कौन सा है, निकृष्ट श्रोता है। दूसरा श्रोता है बैल, निकृष्ट श्रोता में कौन है, बैल। बैल की विशेषता है उसको अंगूर भी दो तो भी, कड़वा भोजन दो तो खली भी दो, सबको एक साथ मिला के खा जाएगा, उसके अंदर विवेक नहीं रहता है किसको हम अलग करें अथवा एक साथ खाएं। तो आप लोग जो बोले सत्य वचन महाराज जी, सत्य वचन महाराज जी, सत्य वचन महाराज जी, अरे कुछ अपना विवेक भी तो रखो, किसी का वहां जाने से मिल जाएगा सत्य वचन महाराज जी, वहां ना जाने से न मिल सत्य वचन महाराज जी, अरे कुछ तो अपना भी विवेक रखो ना। लेकिन अपना विवेक हम पड़ोसी के यहां डाल देते हैं, बस जो बोल दिया बोल दिया। ये कौन सा श्रोता है, बैल है। तीसरा है एक भुरुंड पक्षी है, भुरुंड पक्षी BHURUND भुरुंड, उसकी विशेषता क्या है, सुनेगा, तोते में उसमें अंतर है, तोता भी सुनेगा, सुनकर के जीवन में खुद नहीं उतारेगा, लेकिन जब कभी बोलेगा तो मीठा बोलेगा, लेकिन भुरुंड क्या है, सुनेगा, सुनकर के न जीवन बदलेगा और जब बोलेगा तो आग ही उगलेगा, अपनी आवाज में उसका परिवर्तन है। जैसे इसमें भी कई लोग, आप लोग भी हो यहां कथा हम सुनते हो तो बहुत बढ़िया महाराज जी, और घर जाते हो तो आपका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आपकी जबान में कोई मिठास नहीं आती है, तो घर के बच्चे कहते हैं मम्मी बस कथा सुनाने देखने के लिए कथा सुनती हैं, उनका जीवन कोई बदलता है ही नहीं, आवाज में भी नहीं कोई बदलाव आ रहा है, तो वह कौन है, भुरुंड है। और चौथा है सबसे घटिया, वह है ऊंट, कैमल। कैमल की क्या विशेषता है, उसको हरी हरी मीठी मीठी घास दो तो खाएगा नहीं, क्या खाएगा, कांटा वाला बबूल कीकड़ करके देखा होगा आप। ऐसे महाराज जी ने क्या क्या अच्छी बात बताई उससे नहीं मतलब, महाराज जी ने कहां क्या गलत बोल दिया है बस उसी पे कमेंट कसेगा, कुतर्क करेगा, आपको महाराज जी नहीं बोलना चाहिए, अरे 10 बातें 20 तो अच्छी बताई होगी, मान लो एक शब्द कहीं यूं से यूं निकल गया होगा, लेकिन व्यक्ति वही पकड़ लेगा और उसी पे कमेंट कसना शुरू कर देगा, तो वह कौन सा श्रोता है, ऊंट। तो हमें क्या नहीं बनना है, बोलो भाई, भेड़िया, बैल, भुरुंड और ऊंट नहीं बनना है। अब बनना है तो क्या बनना है, सबसे बढ़िया है चातक बन जाओ, यदि चातक नहीं बन सकते हो तो हंस बन जाना, हंस नहीं बन सकते हो तो कम से कम मीन तो बनना, अब मीन भी नहीं बन सकते तो सुख बन जाना, लेकिन वहीं रुक न जाना, सुख बन करके प्रयास करना ऊपर उठने का, मीन बन जाना, मीन से कहां बनना है, हंस, हंस के बाद कहां बनना है, चातक, क्योंकि चातक बने बनाने बने बिना कल्याण होने वाला है ही नहीं। तो क्या कहा, कृष्ण कथा श्रवणे महोत्सव, जब वो आता होगा ना, क्या उसकी बूंद है, स्वाति की बूंद, तो चातक तो नाच जाता होगा, झूम जाता होगा और मजा आ गया। तो जैसे ही आपको कथा सुनने का कभी अवसर मिले, ताभी क्या करो, एकदम झूम जाओ, मौज में आ जाओ, वाह कथा सुनने का एक अवसर तो मिला है। अगला उससे भी ऊंची चीज, सत्यवादश्च, क्या करना, सत्य भाषण करना, वैसे बड़ा मुश्किल काम है। भाषण होवे या सत्य होवे, ये संभव है क्या, है संभव है, भाषण होवे और सत्य होवे, ये संभव हो सकता है, हो सकता है, हम सत्य बोलते हैं भाई। बांगी किसका काम है, माया का है कि उसका है, प्रकृति का है ना। अब बांगी प्रकृति के माया से जो बोला जाएगा वो सत्य होगा, झूठ होगा। आपसे पूछा एक घर किसका है, तो क्या बोला, मेरा घर है। कहा ये पत्नी किसकी है, तो क्या कहा, भगवान की है, मेरी है, क्या बोलते हो बताओ, भगवान की बोलते हो, मैं घर जाके पूछूंगा तो पता चलेगा। ये घर मेरा है, पत्नी मेरा है, बच्चा मेरा है, ये धन मेरा है, जो ये सब कर रहे हो सत्य है कि झूठ है, ये जमीन मेरी है एक सत्य झूठ है, ये शरीर मेरा है भी बोलना क्या है, सत्य झूठ है। तो सही बता, जो भी बोलते हो वह सब के सब क्या है, लेकिन अब क्या करो, बोले बिना तो व्यवहार चलता भी नहीं है, इसे जितना कम से कम झूठ बोलो उतना ही सत्य है। भाई देखो, मुंबई में रहोगे तो अब सोचो असली दूध मिले, ये मिलना तो बहुत ही, तो दूध के नाम पे क्या खाओगे भगवान जान मालूम है। इसलिए बंबई में तो घाटकोपे खिलाओ, मैं दूध पीना पसंद ही नहीं करता, यहां भी थोड़ा कॉफी लेता था वो भी बंद कर दिया, क्या करूं। सही बता रहा हूं कि वहां एक बार मैंने कहीं वो खाया दही, दही ऊपर उठाया तो उसने तार निकल रहे तार, अब कहा किस दूध की जमाया, तो कहा पैकेट वाले दूध की, क्या गारंटी है दूध पी रहे हैं कि केमिकल पी रहे हैं। इसलिए भगवान जितना कम से कम उस जहर को ग्रहण करो उतना ही ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो झूठ बोले बिना तो कोई व्यवहार चलने वाला है नहीं, बोलना ही पड़ता है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरा कपड़ा है भी बोलते, मेरा कपड़ा है, बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी जितना कम से कम बोलना पड़े, अथवा कौन सा बोलो, हित बोलो, कल्याणकारी बोलो, मित बोलो, नाप तौल करके मित संयमित बोलो, ठीक ना, हित मित ये बोलना सीख जाओ तो समझ लेना आप सत्य बोल रहे हो। क्या बोलना है, हित, उसे सत्य बोलना नहीं है, मैं वादा करता जो बोलोगे वो सब क्या है, झूठी है। लेकिन फिर भी बोले बिना गुजारा भी तो है ही नहीं, बोलना ही पड़ता है, तो क्या बोलना, हित बोलना, क्या बोलना है, हित बोलना, और क्या बोलना, मित बोलना, ऐसा वचन बोलना जो कल्याणकारी होवे और जो संयमित होवे, सीमित मात्रा में होवे, आवश्यकता ज्यादा न बोलना। अगला सत्यवादस्य, पर इवतो द्रविणे वा परा अपवादे परांग मुखता, दूसरे की स्त्री होवे, दूसरे की स्त्री अथवा दूसरे का धन है, अथवा पर अपवादे दूसरे की निंदा, पर अपवाद दूसरे की निंदा, इनसे परांग मुखता, इनसे मुख मोड़ लेना, उनसे क्या करना है, मुख मोड़ लेना, उधर मुख करोगे तो बड़ी मुश्किल है। अरे दूसरे की निंदा, अरे पाप, बड़ा उल्टा सीधा काम करके धन कमा रहा है, बेईमानी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब उसकी निंदा करने से उसमें कोई कमी तो होने वाली है ही नहीं, व्यर्थ ही हम पाप के भागी बन रहे हैं, तो हम पाप के भागी क्यों बने, वो जाने उसका कर्म जाने। दूसरे की स्त्री कितनी भी सुंदर हो क्या करना है, दूसरे का धन कितना भी हो तुम्हारे काम आने वाला तो है ही नहीं, लेकिन गिद्ध की तरह दूसरे के धन पे ही दृष्टि लगी हुई है तो समझ लेना हम साधक बन ही नहीं सकते हैं। तो भक्ति में तीन चीजें बड़ी अहम है, इसको एक कथा के माध्यम से समझ लो तो समझ में आ जाएगा। पर स्त्री है ना। कहो महाराज जी, आप लोग बोल देते हो कि आजकल ऐसे सब घूमते हैं कि दृष्टि चली जाती है, बोलते हो ना। हम भी एक आध को समझाया एक आध बार, लेकिन हमें उल्टे गांट में पड़ गई, तो हमने समझाना तो बंद कर दिया। फिर विचार कैसे करें, तो भागवत की कथा के माध्यम से विचार किया। भागवत की कथा में फैशन के पहले अवतार लेने वाले कौन देवता हैं, बोलो भाई। भगवान विष्णु किसके रूप में आए थे, मोहिनी के रूप में आए थे, आए थे ना। और वहां देखना मोहिनी के रूप में हवा बहने लगी तो थोड़ा उनका कपड़े क्या हुए, थोड़ा ऊपर उठे तो पांव थोड़ा दिख गया, मतलब वस्त्र भी ऐसे थोड़ा पहने हुए थे। ये वस्त्र मोहित करने के लिए भगवान ने पैदा किया था, किसको, असुरों को मोहित करने के लिए। तो अब उन वस्त्रों में भगवान को देखा तो आप भी देख लोगे तो आप भी क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, नहीं हो जाए। है वो भी रूप किसका, भगवान का। तो जब कोई ऐसा रूप आता है ना, तो मैं कहता हूं, मैं मन में सोचता हूं, इसे कहता हूं नहीं है, मोहिनी रूप में भगवान नारायण को नमस्कार। क्या बोल देता हूं, मोहिनी रूप में किसको नमस्कार कर रहा हूं, नारायण को नमस्कार। लेकिन ध्यान देना है, यदि उस रूप को देखने लग गए तो आपके हाथ से अमृत छिन जाएगा। छीना, असुरों ने भी देखा किसके रूप को, भगवान के रूप को देखा, लेकिन भगवान के रूप को नहीं देखा, भगवान के मोहिनी रूप को देखा। अब मोहिनी रूप में इससे उलझ गए कि अमृत और दूसरे को पिलाते रहे, उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बस उसके हर कर्तव्य को स्वीकार करते जा रहे हैं, उसकी हर शर्त को माने जा रहे हैं। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, भाई ये रूप भी मेरा है, लेकिन उस रूप को बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे हाथ से अमृत छिन जाएगा। अमृत माने आपका अपना स्वरूप का चिंतन छिन जाएगा, और विषय चिंतन में ही, भोग के चिंतन में ही तुम डूब जाओगे। अब विषय भोग के चिंतन में डूब गए तो मृत्यु के मुख में भी फंस जाओगे, क्योंकि तुम अपने स्वरूप के चिंतन से हटे तो अमरता तुम्हारे हाथ से निकल गई। इसलिए यहां क्या करना, पर इवतव परांग मुखता, उधर ध्यान नहीं देना, देवता बन जाना। असुर बन गए तो घूर घूर के देखोगे, और देवता बन गए तो बस इधर दृष्टि कर लो, काहे को जाना उधर। जब है कोई गिन रहा हो हजार हजार के नोट, बार बार वही दृष्टि चली जाती है। अरे गिनने से तुम्हें मिलने की तो है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में लोभ है और पैदा हो जाएगा। मन मनाओगे कि एक नोट गिर जाती तो पकड़ जाता, बाद में उसके जाने के बाद मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। उधर देखो ही नहीं कितना गिन रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पता नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे सिर्फ कई लोग ऐसे पूछते हैं, बड़ा सही बताऊं, हमें तो बड़ा वो लगता है, अटपटा लग जाता है, महाराज क्या हो जाता है। अरे मेरा प्रारब्ध मेरे साथ है, दूसरे का प्रारब्ध दूसरे के साथ है, मेरे को यदि मैं ज्यादा बता दूं तेरे मन में द्वेष हो जाएगा, कम बता दूं तो तेरे को अभिमान हो जाएगा, अरे मैं तो ज्यादा हो गया। ये सब जान करके करोगे भी क्या, कौन क्या कमाता है, तुम उसको देने वाले तो होने के दे दोगे, बताओ देने वाले हैं। तब भी हम जानकारी करके या किसी के भीतर हीन भावना पैदा करेंगे या अपने भीतर क्या करेंगे, अहंकार पैदा करेंगे। इसलिए कुछ भी मत सोचो, कौन क्या कमा रहा है, कौन कहां जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दिया करो। और दूसरा कहां नहीं ध्यान देना है, पर अपवादे, दूसरे की निंदा में भी एकदम मुंबुख हो जाना, उधर ध्यान ही देना कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा। लेकिन दूसरे निंदा होए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, एकदम कान क्या कहा ऐसे सुनते हैं। चलो आगे, ग्राम्य कथा सूद बेग है। ग्राम्य कथा माने क्या हुआ, जो ग्राम्य चर्चा, मतलब अश्लील बातें हैं। ग्राम्य कथा माने क्या हुआ, जो अश्लील बातें हैं, जो बातें आपके भीतर वासनाओं को उत्पन्न कर देंगे। कुछ ऐसी चर्चाएं भी होती ना, कुछ ऐसे दृश्य भी होते हैं ना, जो दृश्य आपके भीतर की कामनाओं को क्या करते हैं, कामनाओं के अंकुर को क्या करते हैं। अरे भाई देखो, उनका भजन है कौन सा, ओ ये जो यहां रहती हैं सैनिकों के ऊपर है, इस देश लता मंगेशकर, नहीं हाँ लता मंगेशकर का वो है ना, सैनिक उन्होंने रो दिया, मेरे वतन के लोगों, अथवा बीत रस की इसी कोई कविता सुन लिए तो आपके भीतर क्या जाता है? आला खंड का भी पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? बातन बातन बत पड़ हुई गई, औ बातन में बाढ़ी रार, दोनों दल में हल्ला हो गई, छत्रिन खींच लई तलवार, पैदल के संग पैदल भिज गई, यो सवारन के असवार। मतलब ऐसी कविता कही गई है ढंग से कि लगता है तलवार निकाल करके जो जाओ, एक शरीर में क्या हो जाता है, जोश आ जाता, उछल पड़ता है। तो ये कहां से संस्कार आया? शब्द का ही तो संस्कार है ना। तो यदि भोग वासनाओं वाली चर्चाओं के बीच की चर्चा सुनेंगे तो आपके भीतर कामना का बीज नहीं भी होगा ना, तो भी क्या हो जाता है, उद्भूत हो जाएगा। इसलिए ऐसी चर्चाओं से क्या करना, घृणा करना, दूर रहना, उधर जाना ही नहीं। और क्या करना है, सुतीर्थ गमनेशु तात्पर्यम, जो सुंदर तीर्थ हैं, कौन से तीर्थ हैं, जो सुंदर तीर्थ हैं, उन तीर्थों में गमन करने में क्या होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए, वहां जाने का एकदम वृत्ति होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। क्योंकि तीर्थ के बहाने हमारे जीवन में थोड़ा संयम आता है, लेकिन आजकल तीर्थ तो क्या हो गया है, आपका पिकनिक प्लेस हो गया है। तो तीर्थ को पिकनिक न बनाना, मैं बार बार कहता हूं। तीर्थ में जाकर के कई लोग कहते हैं होटल में खा के आ जाएंगे, अरे होटल में ही खाना था तो तुम हरिद्वार जाने की आवश्यकता क्या थी, मुंबई में होटल की कमी थी क्या? अरे कम से कम 11 बजे वहां भोजन करोगे, शाम को 7-8 बजे करोगे और 10 दिन रहोगे तो हो सकता है घर में आकर के भी वो सब परंपरा चालू कर दोगे। कुछ जाके वहां सीखना चाहिए, हम वो सीखते तो है नहीं, उल्टे वहां में और दोस्त देख लेते हैं, महाराज जी ऐसा बोलते हैं, महाराज जी कैसा करते हैं, महाराज, अरे वहां हम महाराज जी को ठीक करने गए थे कि अपने को ठीक करने गए थे, साफ बताओ, सही बता रहा, बड़ी मुश्किल काम है, वहां हम लोग महाराज जी को ठीक करने जाते हैं, आश्रम को ठीक करने जाते हैं। चलो क्या करोगे, बड़ा मुश्किल है। बताया ना आश्रम में इस रोटी बन रही थी, तो जहां सब आदमियों की रोटी बनती है, एक दो रोटी कच्ची तो हो जाती है, एक माई को एक रोटी कच्ची सी मिली, तो जब कच्ची रोटी मिली तो उसने देखा, कहा यदि यही बहु रोटी दी होती तो उसके मुंह पे मार के फेंकते। उसने सिद्ध बोला है, मन में विचार किया, यही रोटी यदि आश्रम दी है तो प्रसाद समझकर जिसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। फिर यही बुद्धि घर की दूही रोटी में हो जाए तो क्या हमारे घर में लड़ाई बजेगी क्या? तो आश्रमों में जाकर के हम ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, वहां हम कैसा अपने व्यवहार को करते हैं, उस व्यवहार को सीख करके घर में भी आकर के वैसा व्यवहार करना सीखो, तो आश्रम में जाने का कोई न कोई फायदा है, अन्यथा नहीं है। ये तो कल की ही व्याख्या हुई, कल बहुत जल्दी बताया था ना, लेकिन फिर भी व्याख्या होना, क्योंकि व्यास का नाम ही है कि उसको क्या करना, बड़ा कर देना, क्योंकि बड़ा सूत्र रूप में तो कल बता ही दिया था, लेकिन सूत्र रूप में बात बैठी, जैसे आज चार श्रोताओं का भी विशेष चर्चा हो गई है। तो अच्छे तीर्थों में क्या करना, गमन करना, अच्छे तीर्थों में अच्छे महापुरुष मिलेंगे, उनके पास बैठोगे, सत्संग सुनोगे, और कोई चर्चा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा कह नहीं सकते हो। आगे क्या होगा इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, लेकिन ये विषय अपनी क्या स्थिति देखते जाना, हम कहां तक पहुंचे हैं, अभी क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये करना न करना किसके बस में है, क्योंकि अपनी स्थिति को आप अच्छी तरह जानते हो, मैं नहीं जान सकता कि आप कहां तक पहुंचे हो, आपकी स्थिति क्या है, आप जान सकते हो, इसलिए अपने आप को कहां ले जाना है, कहां है, कहां से उठाना है, आप जानोगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।